हरिशरणं 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 हरिशरणं
प्रयत्नात् यत् मानस को योगी संशुद्ध के दिशा अनेक जन्म संस्कृत याद पर नानो दोष में अपने मन की वह भीतर की जैसे भूख लगी है आदमी को प्यास जैसे लगती है ना, इस तरह से है संसार के दुख से संतप्त हो जाए और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए उत्कंठा हो जाए, तो उसके लिए देरी का काम नहीं है। देखो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का संबंध छूटना कठिन है। ये कठिनता है साधक के, मान तो रखिए परमात्मा प्राप्ति कठिन है, बात वास्तव में परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति है राग है इसमें फंसावट है, ये छूटनी कठिन है। और विचार करे तो परमात्मा तो छूटेगा नहीं, ये तो छूटेगा ही, इसको रख नहीं सकते, इसके साथ रह सकते नहीं। संसार के शरीर के साथ कोई रह सकता नहीं और किसी के साथ मैं शरीर और संसार रह सकता नहीं, रहता नहीं, रहता ही नहीं, छूटता ही है उसी को छोड़ना है, जो नहीं छूटता है उसी को बात करना है। क्या जो निरंतर छूटना छूटता है उसी को छोड़ना है, बालक बन को छोड़ा है किसी ने बताओ? तभी अमुक तारीख को मैंने बालक बन छोड़ दिया, फिर जवानी छोड़ी तो बताओ? ये तो आप ही छूटे, आप ही छूट जाए स्वाभाविक है, शरीर भी छूट ही रहा है। अब बैन हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं सच्ची बात है, ये बात समझ आती है कि नहीं? जी रहे हैं कि मर रहे हैं, इसलिए मैं संसार में रह गया और भी संसार में रह सो मैं, तो ये सही रहा सही और वैसी मेरे पास मस्ती देखी जा रही, तू संसार में रह सही रहने वाली बात है, जिक्र बहुत दूर से पकड़ी है। क्या सर बात बिल्कुल है नहीं है, रहना कहाँ हो रहा है, ये खास बात है, भावना बनी है ना भाई रहने की, एक अद्भुति भावना ये बनी है कि जैसे सांसारिक वस्तु है उसकी प्राप्ति में जैसे देरी लगती है, ऐसे सांसारिक प्राप्ति बना रहा हूँ अपनी देरी लगती है, एक दो भावनाएं बनी हुई है, इसमें कोई शंका होती हो तो बोलो, बस है नहीं ये परमात्म तत्व जो नित्य निरंतर सबको प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है, और संसार स्वतः छूट रहा है, शरीर आपसे अलग हो रहा है, संसार अलग होता है, नित्य निरंतर अलग होता है और है भी नहीं साथ में, साथ में केवल माना है, और परमात्मा को दूर केवल माना है, मान्यता के बोले संसार के है मेरा शरीर मेरा है, मेरे साथ शरीर है, मैं शरीर के साथ हूँ, कुटुंब मेरा है, कुटुंब के साथ मैं हूँ, रुपया मेरा है, मैं के साथ हूँ, ये केवल मान्यता है, केवल मान्यता के सिवा कुछ नहीं है, और परमात्मा दूर है ये केवल मान्यता है। अब इसमें शंका करो आप लोग, बहुत ज्यादा बढ़िया निकल रही है, अगर शंका करोगे चलो करोगे तो बढ़िया बात नहीं निकल, जो सत तेज है, सर्वव्यापक है, वो दूर हमारे से हो कर सकते, हम उसे दूर हो कर सकते हैं? बताओ। तो ये कबर न छोड़ना है, छोड़ रहे आ गई। अब नहीं पकड़ेंगे, ये बात है, नहीं पकड़ेंगे। इसमें खास संयोग जन सुख की आसक्ति है, वो बाधक है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनि एव, इतने संबंध जन्य सुख है, वे केवल दुखों के कारण है, केवल निखालस दुखों के ही कारण है, और कुछ भी मतलब नहीं, केवल दुख और आदि और अंत वाले हैं, मिटने वाले हैं। निरंतर हमारे से अलग होने वाले हैं, ये बात होती है कि नहीं जितने शंका क्या है, इसमें शंका क्या बताओ, हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, ऐसे संबंध विच्छेद क्या संबंध है नहीं, केवल मना हुआ है, संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। वेदांत के ग्रंथ पढ़ते हैं आप वेदांत, उसमें अगर विचार करें तो चेतन तत्व के साथ में जड़ का संबंध कैसे हो सकता है, रात और दिन का दोनों का संबंध कैसे हो सकता है, इसको दूर करने का विचार है ना, उसमें भी दृढ़ कर रहे हैं, उसको भी दृढ़ कर रहे हैं, दूर करने का विचार करते हैं, इससे संबंध दृढ़ होता है। दूर करने की भावना का तात्पर्य तो कि हमारे साथ है, ये है कि नहीं, हमारे इनका संबंध है, दूर करने में क्या होता है कि संबंध है तभी तो दूर करते हो, तो दूर करने में संबंध दृढ़ होता है, संबंध है ये बात मन से तुम ना दूर करते हो, शरीर का हमारा संबंध छूट जाए, ये है ना भाव, इन्हें संबंध छोड़ दें, तो छोड़ देना मूल में संबंध है ये बात होती है ना, तो निर्माणी ने छोड़ने का भाव है, वो पकड़ने का भाव है, उसका नतीजा पकड़ना होता है, जितना छूटने का भाव है उसका अर्थ होता है पकड़, पकड़ लो, ये आती ही है, इधर दृष्टि नहीं जाती, तो अभ्यास है तो पकड़ होती, जो अभ्यास पकड़ का जोरदार हो रहा है, छोड़ने का अभ्यास है तो मूल में पकड़ है ये बात सिद्ध होती है ना, तो छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें मूल में पकड़ को सिद्ध कर रहे हैं, संबंध को दृढ़ कर रहे हैं, ये बात समझ आई है ना, हम तो इस बात को खोजना चाहिए, समझ है नहीं हमारा, समझ बस है ना, तो क्या करनो, उपेक्षा रोग समझ है नहीं हमारा, ठीक समझा हमारा संबंध है नहीं, शरीर के साथ संसार के साथ कुटुंब के साथ हमारा संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है ही नहीं। अभ्यास और वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वैराग्य है उससे राग मिटेगा, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? राग रहता है तो राग को छोड़ो, राग नहीं है वो, राग वास्तव में राग है नहीं, माना है। जिन वस्तुओं से राग है उनका संबंध रहता है, रहेगा क्या बताओ? रहता नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकते हैं? तो वास्ते है ये जो है समय समय ऊपर में बुद्धिया धृतया आप संस्था मना करके न केंद्र चंद्रिय, ये उपाय बहुत ही बढ़िया है। उपराम उपराम रहे तो उपराम आप लोग उपराम हो जाओ, राज में बता जाएगा, जिससे उपराम हो जाओगे उससे राग निवृत्त हो जाएगा। राग निवृत्त होकर के फिर उपराम हो तो राग निवृत्ति करने में राग दृढ़ होता है, उपराम होने से। ये एक बात बहुत मार्मिक मिली है हमें तो पुस्तकों से, संतों से, कि मन को बार बार लगाना है इसमें चंचलता को दृढ़ करना है, और उपेक्षा रहना है। तीन बात मैंने बताई थी कल भी विषय पर शुरू बताई थी कि जो संसार का चिंतन होता है उसके साथ विरोध करोगे तो चिंतन नहीं हो, जल्दी मिटेगा नहीं। उसमें रस लोगे, ठीक मानोगे तो चिंतन बिटेगा नहीं, और चिंतन आप साफ हो रहा है उसके साथ अपने को मिला लोगे तो मिटेगा नहीं। ये तीन बात है, द्वेष करोगे तो मिटे नहीं, राग करोगे तो मिटे नहीं, और आप साफ चिंतन के साथ मिल जाओगे तो मिटेगा नहीं। ये तीन कंठस्थ कर लो आप, कंठस्थ करके इस पर विचार करो। ये एक अलग विभाग है, प्रकृति है, उसका विभाग है परिवर्तन। हर समय महाप्रलय महासर्ग में कभी भी प्रकृति निष्क्रिय नहीं होती, ये क्रियाशील है। तो ये तो सक्रिय है ही, क्रिया हुई है, इसमें होती रहेगी। इसके साथ राग करो तो फंसोगे, द्वेष करोगे तो फंसोगे, साथ मिल जाओ तो फंसोगे। ना से राग करे, ना द्वेष करे, ना मिले, ये तो विभाग अलग है। जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है तो नदी का प्रवाह बह रहा है तो हमारे क्या बात अलग ही बहती हुई नदी है। रस्ते में मोटना बैठी है तो हमारे क्या संबंध होगा उनके? ऐसे मन है, इंद्रियां है, शरीर है, ये सब नाश की तरफ निरंतर जा रही है, इनका हमारे क्या संबंध? नित्य है, सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना। नित्य है, सर्वगत स्थाणु और अचल तो असल पड़े को तो भूल गए, चलता है वो बरसात हो गए। इसमें बदलने वाला नहीं, बदलने वाला मान लिया। विचार तो है ये उपाय विचार है, अब विचार की प्रधानता ही है, अब मान रखिए क्रिया की प्रधानता। करियाऊ तो संबंध होगी, परंतु ऐसा मान करके जब छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे, श्वास छोड़ दे, विचार छोड़ दे तो फंसेगा। हाँ जी, तो वो तो फंसेगा ही, विचार की साधना तो करनी है ना, हमारे साथ नहीं है ये, हम इनके साथ नहीं है, हमारा संग हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। देखो आप अपने आप को बड़ी सीधी सरल बात है कि मैं हूं, ये अनुभव है कि नहीं मैं हूं? कुत्ते को भी अनुभव है, कुत्ता रे कुत्ता घूर रहा है कि मैं बैठा, तू क्यों आया, तो मैं तो हूं, तू क्यों आया, तो मैं हूं और मौजूद हूं, ये ज्ञान तो कुत्ते को भी है, पशु पक्षी को भी है, जीव मात्र को है, अपनी सत्ता का बोध तो है। अब जिसकी सत्ता नहीं है उसको अपनी सत्ता में मिला है, यही तो अज्ञान है। जो सत्ता न मिला है, असत की सत्ता को न मिला है, तो सत्य बोध रूप तो है ही। कौन फ्री में कहा जाए, सत्य है, अब स्वतः है उसको क्रिया जन्य मान लिया, वेदांत में विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता और फिर समरण मनन निर्ध्यासन तत्व पदार्थ निवेशन, ये जो आठ अंतरंग साधन है, ये तो याद नहीं आपको, तो पढ़ा है वेदांत, वेदांत पढ़ेगा अंतरंग साधन है, दूसरा जितना बहिरंग साधन है, जितना तीर्थ है, व्रत है, होम है, ये सब बहिरंग साधन है, परंपरा माना है, और ये साथ साथ आठ साधन अंतरंग है, सबसे तत्व विचार तत्व का तत्व और पण का जो विवेचन है, इनका विच्छेद है, ये खास माना है, अंतिम साधन माना है। तो इनमें सब में त्याग ही त्याग मुख्य है, चेतना का त्याग ही मुख्य है, इसमें चेतन का पकड़ नहीं है, मेरे ध्यान में विजातीय वृत्तियों का प्रवाह है, उसको छोड़ना है, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना है, तो सजातीय वृत्ति का प्रवाह करना नहीं है, विजाति का छोड़ना ही है मुख्य, तो छोड़ने के मुख्य है, पर वो संसार का काम करते हैं तो इस भी करने से ही होगा, विवेक करते हैं करने से ही होगा, वैराग करते हैं तो करने से ही होगा, सदा सर्व समाधि संपत्ति करने से होगी, मुमुक्षुता करने से होगी। हाँ तो समझ, इनको समझो, सब में संबंध विच्छेद की ही बात है, इससे उपराम होना है, ये नहीं है, ये बात उपरम होना है, सभी सभी उपरम है, सबका अर्थ उपरम होना है, किससे उपरम होना है कि जो छूट रहा है, जो आपसे अलग हो रहा है उससे उपरम होना है, ना इसको छोड़ना है, ना इसको पकड़ना है, ना इसके साथ रहना है, ना साथ मानना है, हमें ये बात बहुत गहरी मालूम थी, क्या जिसे आप और आपसे आप जो संकल्प विकल्प हो जाए आप उन लोगों के साथ उनको अपने अपने में नहीं मान रहा, उनको अपने में थोड़ा ही आप तो है जो रहते हैं, ये वृत्तियां चलती रहती है तो चलने वाले आप स्थिर रहने वाले एक कैसे हुई। प्रकृति सोते चले प्रकृति चलती रहेगी, चलने स्वरूप है इसका, कभी महाप्रलय में बंद नहीं होती। महाप्रलय में प्रकृति अक्रिय कहते हैं तो अक्रिय कहते हैं, अक्रिय नहीं होती प्रकृति, सक्रिय होती, क्रियाशील है। क्रिया और पदार्थ मात्र प्रकृति है, और कर्ण मिलते इस कारण से लोग चकराते हैं और मानते नहीं, दृष्टि नहीं कि कर्ण मिलते साधन कैसे होगा, अरे साधन हो तो कर्ण मिलते कैसे होगा। तो क्रियाजन्य कर्ण सापेक्ष होगा, अरे क्रिया से अधिक सापेक्ष कैसे होगा। देखो एक बात है ध्यान देने की, अब पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की बात पढ़े लिखे में बोलते हूँ, कर्ता कर्म करने आदि कितने कारक है, कारकों संबंध तो क्रिया के साथ ही है। कारक और कर्ता दोनों मिलते तो एक सूत्र से बनते, एक नहीं स्वतंत्र कर्ता कर्ता की संज्ञा अलग बांध दी, नहीं तो कारक को चाहे कर्ता को पर्याय है। तो कार्य जितने मात्र करता होगा इस वास्ते है क्रिया का संबंधी का नाम करता है, इसकी अपेक्षा क्रिया के जनक का नाम करता है, ये अच्छा माना गया क्या है? तो क्रिया का जनक करता है तो क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है, कर्म का संबंध है, कर्ण का संबंध है, अधिग्रहण का संबंध है, इनका सबका संबंध तो क्रिया के साथ है, वस्तु तत्व है क्रिया से अतीत। क्रिया सब है विकारास्त गुणास्त प्रकृति से भगवान, विकार और गुण सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्य कर्ण कर्तव्य से हेतु प्रकृति से थे, कार्य और कर्ण कार्य जितना पैदा होता है, कर्ण जितना है, अंतःकरण है, बहिःकरण है, जितने तेरा कर्ण है, ये सब प्रकृति में प्रकृति से पैदा होते हैं। तो प्रकृति तक ही ये नहीं पहुंच सकते तो प्रकृति के अतीत के तत्व कैसे पहुंचेंगे कर्ण। घर में संपूर्ण पृथ्वी नहीं भरी जाती तो पृथ्वी का भावी भी थोड़ा भी नहीं भरा जाता, सब पृथ्वी के घर वगैरह भरा जाएगा। ऐसी प्रकृति का कार्य जो कर्ण है वो प्रकृति से अतीत कैसे चला जाएगा, तो कर्णों की जरूरत वो कैसे कर लोगे। असाधन का नहीं करो, जितने वेदांत करते हैं वो त्याग का नहीं करते हैं, प्राप्ति के लिए करते हैं। करते करते तृप्त नहीं होते हैं, इसका उपकार करो। मैं कहता हूँ जैसे बात मानी है कर्मयोग से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति ज्ञान योग से होती है। हम क्या कर्मयोग से ही मुक्ति होती है, ज्ञान योग से कभी मुक्ति हुई नहीं होगी, नहीं हो सकती। कर्मयोग क्या है, सुख कैसे वे, अरे वो सुख कैसे वे, इसके लिए अपने सुख का त्याग करो, इससे होगा बाबा। हाँ तो ज्ञान तो होना चाहिए, विवेक के बिना तो साधन होता ही नहीं, विवेक के बिना स्वर्ग नहीं होगा, यज्ञ भी नहीं होगा, होम भी नहीं होगा, संसार सारा काम तो नहीं हो, रोटी नहीं बनाएगी, विवेक बिना क्या होगा, बोल भी नहीं सको, कुछ चल भी नहीं सको, खा भी नहीं सको, विवेक के बिना। नारायण 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 ये बात है, अभी वो आप समझो।
जय सीताराम सीताराम सीता। की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की।
नारायण 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 भाई। हम यहाँ जी रहे हैं, यहाँ रहने वाले हैं, जी रहे हैं। ये गलत धारणा है। सच्ची बात यह है कि मर रहे हैं, इसमें संदेह हो तो आप शंका करो। मानो जितने वर्ष हमारे को आए हैं उतने वर्ष जीने में हमारे कम हो गए हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? और कम हो गए इतने नहीं है, कम हो रहे हैं। हम लोग यहाँ आकर के बैठे, मैं जैसे आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। चाहे 5-7 मिनट ही हुए हो पर 5-7 मिनट हमारा जीना कम हो गया, मरना नजीक आ गया। तो प्रत्येक क्षण शरीर का मरना हो रहा है, मौत नजीक आ रही है, जीना दूर जा रहा है। और वहम है जो हम जी रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं ऐसी बात से क्या फायदा होगा? देखो एक बात बताओ, सच्ची बात के ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है। सच्ची बात ठीक जानने का नाम ही तत्व ज्ञान है। ज्ञान आदे हो तो कैवल्य, ज्ञान से कैवल्य मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जीव का भला हो जाता है, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। किस वे ज्ञान से? ज्ञान क्या है? चीज वैसी जान लेना, जैसी है वैसा का वैसा जान लेना ज्ञान है। और अज्ञानम यद तो अन्यथा, अतः अन्यथा अज्ञानम। अभी पाठ हुआ ना, इसे उल्टा है, वो अज्ञान है। अज्ञान नाम न जानने का नहीं है, न जानना है ना, उस न जानने का नाम अज्ञान नहीं है। असली ज्ञान से उल्टा जानना है, असली वास्तव में है उस वास्तव से उल्टा जानने का नाम अज्ञान है। इस खंभे को पत्थर में ज्ञान नहीं होगा तो पत्थर को कोई अज्ञानी नहीं कहेगा, और अज्ञानी है पत्थर, यह लकड़ी अज्ञानी है, ऐसा कोई नहीं कहता। अज्ञानी कौन है? जो ज्ञान है उल्टा, उससे उल्टा ज्ञान है, माने यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसका नाम अज्ञान। ऐसे अज्ञान वाले का नाम अज्ञानी है। शास्त्रों में जो कुछ महिमा है ज्ञान की है, बड़ी भारी महिमा। नहीं ज्ञानेन शरीरम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। साफ कहा भगवान, नहीं ज्ञानेन शरीरम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। और सब स्वयं योग से वो स्वयं को प्राप्त होता है, वो दूसरे से लेना नहीं पड़ता है। उसके समान कोई पवित्र नहीं, और योग से संसिद्ध होने पर उसको स्वयं हो जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, उपार्जन नहीं होता, वो ज्ञान से योग से संसिद्ध होने पर आप से आप आ जाता है। योग नाम किसका है? समता का नाम है। गीता का योग विलक्षण है, बहुत विलक्षण योग है। लोकों में प्रसिद्धि है कि चित्त एकाग्र नहीं होता, ये एकाग्र हो जाए तो निहाल हो जाए, चित्त चंचल बहुत है। चंचलता से इतना नुकसान नहीं है जितना अज्ञान से नुकसान है। अज्ञान में वास्ते ही मूल कारण तरह तरह के दुखों का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान नहीं हो तो दुख हो ही नहीं सकता। दुख की ताकत नहीं है कि ज्ञानी के पास में आ सके। और अज्ञान की वजह से वो दुख बिना रह ही नहीं सकता, उसको अज्ञान दुख आवेगा ही। अज्ञान मेरे वास्ते मूल कारण है अज्ञान।
चाहे मन स्थिर हो जाए,
चाहे स्थिर हो चाहे चंचल हो, ज्ञान होते ही मन के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। हम कूड़ा कटकर घर में रखेंगे, बाहर फेंके, कहीं फेंको, कोई काम की चीज नहीं है। ऐसे मन की एकाग्रता कोई चीज काम की नहीं है। ये बातें मेरी सुनो, आप पढ़े लिखे हो, सत्संग सुनने वाले हो, इन पर शंकाएं करो कि कैसे बोल रहे हो सभा में। आगे मनुष्य है, क्या है, आप क्या समझा है, आपने कैसे बोलते हो, और सुन बोला करो जरा, ऐसी शंका करनी चाहिए आपको, सच करना चाहिए, कैसे बोलते हो ऐसे। मन की चंचलता इतना दोष नहीं है, बड़ा दोष नहीं है, बहुत बड़ा दोष अज्ञान है। अज्ञान ना जो है वैसी चीज को न जानना, उसका नाम अच्छा उल्टे जानना, उल्टा जानना, केवल न जानना नाम अज्ञान नहीं है। मर रहे हैं और भीतर हम जी रहे हैं, ये अज्ञान है। अगर नहीं हो तो आप बताओ, इसका उत्तर दो कि कितने दिन हम जिए हैं, उतने दिन जीने में कम हो गए कि ज्यादा हो गए, कि बढ़ गए, कि है जितने है बताओ। कम हो गए तो कम होने का ना एक दिन साफ कम हो जाए, उसका ना मरना होगा, तो निरंतर मर रहे हैं ना। सच्ची बात यह है कि निरंतर शरीर का संसार का वियोग हो रहा है, और पिंड पान के वियोग का नाम ही मरना है। मृंग प्राण त्यागे, जीव प्राण धारणे, जीवन नाम प्राण को धारण करना, और मरण नाम पिंड प्राण का वियोग। तो पिंड प्राण का वियोग निरंतर हो रहा है कि नहीं? श्वास प्रति श्वास हमारी उम्र कम हो रही है कि नहीं? एक एक श्वास में हमारी उम्र कम हो रही है। बात यह है एक एक श्वास में उम्र कम हो रही है, तो इनका वियोग हो रहा है। जैसे आप समझो कि पहले बात थी कि बिना सर चातुर्मास होगा 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 रहा, फिर शुरू हो गया। अब कभी चातुर्मास हो रहा है नहीं, समाप्त हो रहा है। जितने दिन चतुर्मास हो गया है उतना कम हो गया है, और एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हो रहा है। अभी आने वालों को हम तो कहते हैं तुमने बहुत देरी की, भागवत हमारी चली गई, रामायण हमारी चली गई, जिस पर बहुत लोग आए थे, बहुत गांव से लोग आए थे, यहाँ के और शहर के लोग भी ज्यादा आए थे, वो समय चला गया, वे चले गए, बहुत से चले गए। तो अब आए हो तो आपने बहुत देरी की, कम से कम देख तो लेते कभी इतने आदमी आए। अच्छे आदमी का दर्शन दुर्लभ है, आज के जमाने में दुर्लभ है। क्योंकि अच्छे आदमी एक जगह मिल जाए कितनी विलक्षण बात है। आप भोजन दे करके अच्छे आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते, प्याऊ लगा करके सबको इतना इकट्ठा नहीं करते। अन्न पानी दो जीव जीवन की है, जीवन के धारण की है अन्न जल, इसका प्रबंध करके ही अच्छे अच्छे आदमियों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो अन्न का और जल का प्रबंध करके? और सत्संग में प्राय अच्छे अच्छे होते, कोई 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 से जूता लेने वाले आ जाए, कोई वो सत्संग और जूता ही लेता है, वो बात न्यारी है। परंतु इसमें सत्संग की दृष्टि से आएंगे वे अच्छे ही अच्छे आदमी आएंगे। अच्छे काल में आदमी घरों में रह सकते हैं, गांव में पीछे रह सकते हैं, सब नहीं आते यहाँ पर, लेकिन आज के आने वाले अच्छे ही अच्छे आते हैं। बुरा कोई चोरी करने वाला, तलाश करने वाला भले ही आ जाए, बुरे आदमी क्यों आएंगे यहाँ? क्या मिलता है, क्या फायदा? आ नहीं सकते, टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। ऐसे भले आदमियों का दर्शन हो जाए ये भी कोई मामूली बात नहीं है। उठते हैं सब, कहते हे नाथ भले आदमी से भेटो नहीं, कुमार से चाल भी है बना। तो कुमार से मिलेगा ज्यादा, भले मन बहुत कम मिलेंगे। एक जगह इकट्ठे किए भले आदमी मिल जाए, आज के जमाने में कितनी विलक्षण बात है। आने मात्र से कितना लाभ होता है, इस बात को लोग समझते नहीं। हम कितनी करड़ी बात कहते हैं। एक माता जी ने मेरे से कहा कि महाराज सेठानी साहब, सेठ साहब यूं तो कहने वाले बहुत आते हैं, पर तुम मर जाओगे तो मर जाओगे, तुम एक ही कहते हो और सुनी नहीं। एक मर्जी बताए शेर साहब, शेठ रामी साहब, शेठ ऐसे तो बहुत कहते हैं, सच व्याख्यान रहने वाले आने वाले पंडितों ऐसा तो बहुत कहते हैं, तुम मर जाओगे मर रहे हो, एक कहते तुम, मेरे एक को ठिका नहीं है, बहुत कहेंगे, पर तुझ मारी नहीं बात कही साहब, तुम एक कहने वाले मिले हो और तुम शेर साहब शेठ रामी साहब कहने वाले मिले हो। हम भी शेठ साहब कह दें, सेठानी साहब कह दें, क्या स्वभाव नहीं है हमारा, और मर जाओ कहने का स्वभाव है। सच्ची बात है, स्वभाव को गाली देने का स्वभाव नहीं है, आपको गाली नहीं देता हूं मैं। जब आपको भले आदमी समझता हूं तो गाली दूंगा। जितने आए उनको भले समझता हूं तो भले आदमी वो गाली देता है। यथार्थ चीज, वास्तविक सच्ची चीज है कि हमारे दिन बीते जा रहे हैं, नहीं के बीते जाए सजन करो हरि चरने हरवा, नीचे दिन बजल नीचे दिन पीछे गए, अच्छे अच्छे दिन बीत गए, अच्छे दिन जाते हैं, दिन नीचे बीते जा रहे, अच्छे दिन जा रहे हैं भाई। अच्छे दिन क्या, जीने का दिन अच्छा है, जीना किसको बुरा लगता है बताओ? बीमार हो जाए, दुख पावे, तो भी मरना नहीं चाहता, जीना अच्छा चाहता है। तो अच्छा दिन है जीने का, वे दिन जा रहे हो, देख क्या रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, ये तो सोचो। अच्छे से अच्छे दिन जो जीवन के दिन है वो जा रहे हैं, और बुरे से बुरा दिन है मरने का, वो दिन नजीक आ रहा है। तो बुरा दिन नजीक आ रहा है, फिर निश्चिंत कैसे बैठे हैं? कम से कम, कम से कम, कम से कम सच्ची बात कर, अनुभव तो करो, ध्यान तो करो इसको, कभी दिन जा रहे हैं। जो करना वो काम जल्दी कर लो, दिन जा रहे, दिन नीचे नीचे जा। सज्जन करो, हरि से नहीं हरवा, भगवान से नहीं कर लो। आते दिन पाछे गए, कहो न कियो न हरि से हेत, अब पूछताया क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत। आते दिन पाछे गए, आठा दिन वही जो जी रहे हैं ये अच्छे दिन है, बुरा दिन वो जो मर गया है। मरने का दिन बुरा है कोई नहीं चाहता, पर जीने का दिन अच्छा है सब चाहते हैं। वे अच्छे दिन आपके हमारे बीत रहे हैं, और बुरा दिन नजीक आ रहा है, फिर चेत कब करोगे? इसमें हमारे भाई चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, डाका डालते हैं, समझते हैं कि हमने इतना धन ले लिया, तुझे बड़ा भारी नुकसान कर दिया, ऊपर की चीज थोड़ी ली है, स्वभाव बहुत बिगड़ गया, और चीज साथ चलेगी नहीं, अब स्वभाव पीछे रहेगा नहीं, ये पूरा के ऊपर साथ चलेगा, आदत बिगाड़ ली, कितना नुकसान किया है जिसका कोई पारावार नहीं। जिसकी चोरी की उसके तो अभाव की पूर्ति हो जाएगी, पर तुम से चोरी की जो चोर बने हो इसकी पूर्ति नहीं होगी, ये नुकसान हो गया सदा के लिए, जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा नुकसान हो गया है। पंद्रह से सुनते नहीं, सुनते तो मानते नहीं, सच्ची बात की तरफ ध्यान नहीं देते, आश्चर्य की बात। तो कम से कम ये तो ध्यान रहे, सावधानी रहे भाई, देखो दिन जा रहे हैं, भगवान का भजन करना हो, उपकार करना हो, दूसरों का हित करना हो, अच्छा काम करना हो, तो जल्दी कर लो, पर पता नहीं, भरोसा नहीं इसी होगा, न जाना हमेशा कब उठ जाए, ये श्वास चलता चलता कब बंद हो जाए क्या पता है, दम आया न आया खबर क्या है, दम आया न आया। आपके हमारे पास कोई है बल कि श्वास नहीं आया तो ले ही जाएंगे, क्यों मर जाए श्वास नहीं आया, ले लेते, आज की बात नहीं, चलता है तो मुफ्त में चलता है, बंद हो जाए तो ले ले, हाथ की बात नहीं है, वो बंद होने का दिन आ रहा है, एक एक श्वास खर्च हो रहा है, मौत आ रही है एकदम नजीक, और गफल तुम बैठे कब चेत करेंगे बताओ? वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम चेत करेंगे, होश में आएंगे, हमारा असली काम है उसको हम संभालेंगे। आयो जग एक काज तो करा तो संभाले, वो जिस काम के लिए आए वो कब संभालेगा? इधर उधर देख रहे हैं, दिन जा रहे हैं ना, बाद बेबाद बेथा दिन खोए, कर कर डामाडोल साची जान गही ते गाड़ी, ये झूठी झमर झोल हंसा राम सदा मुख। भगवान का भयंकर भाई, चलिए वाद विवाद प्रसादन खोए कर कर डावाडोल प्रसादन खोजी साची जान गही चाहे गाड़ी धन है संपत्ति है वैभव है घर है जमीन है हमारे पास जायदाद है साची जान गही चाहे गढ़ी खूब पकड़ी है बिल्कुल झूठी जामत बोल कुछ सुपना सो हो जा उसी सुत कुटुम्ब धन धाम हो सतेत बलदी व नींद सू जब ईश्वर का नाम ये मनुष्य तन फिर नहीं हुए ये बार बार नहीं मिलता है अपना बालकपना गया अब नहीं आ सकता जवानी गई पीछे नहीं आ सकती गए दिन नहीं आ सकते दूसरी बार यहां जो बीत गए हैं ना दिन ये आने से नहीं है वो तो जाने के जा ही रहे कितना नुकसान हो रहा है सबसे जीना अच्छा लगता है और वो जीवन जा रहा है अच्छे से अच्छे भगत है वो जा रही है बढ़िया से बढ़िया भगत जा रही है और ले क्या रहे हैं बताओ कर क्या रहे हैं स्वभाव शुद्ध बना लो ये बिल्कुल उन्नति है आपकी इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र वो स्वभाव बिगड़ता जा रहा है कितना नुकसान हो रहा है जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी कितनी विलक्षण बात है शुद्ध स्वभाव वाले के वसुधैव कुटुंबकम संसार मात्र कुटुंबी है अपने हैं कितनी विलक्षण बात है हेतु रहित जुग जुग उपकारी भगवान और भगवान के भगत ये सदा उपकार करते कोई जाने तो कोई न जाने तो कोई माने तो कोई न माने तो कोई इस बात को स्वीकार करे तो न स्वीकार करे तो इनके द्वारा भला होता ही है तो इन कौन नहीं चाहता और वो स्वभाव से गया वो और कुछ फर्क नहीं पड़ता मनुष्य सब ऐसे हैं हाथ पांव नाक पांव ऐसे ही है हमारे हाथ पार नाक तो ऐसे ही है हड्डियां वैसे ही मांस वैसे ही आंख है वैसे ही सब इकट्ठा धंधा ऐसे ही है परंतु स्वभाव जिनका अच्छा बन गया है उसको लोग चाहते हैं स्वभाव बिगड़ा हुआ घर का आदमी नहीं सुहाता बिगड़ा हुआ आदमी अब वो स्वभाव सुधारने में आप स्वतंत्र हो धन कमाने में परतंत्र हो जिसमें तो रात दिन लगते हो धन कमा लें और आज की बात नहीं अब स्वभाव सुधार मेरे को जरूर सुधर जाएगा इसमें संदेह नहीं है इसमें सब स्वतंत्र है कोई पराधीन नहीं है स्वाधीन है सब तो असली लाभ लेने के लिए सब स्वाधीन है भगवान ने कृपा करके और जीव के उद्धार के लिए ये मानव सही दिया भाई हो चाहे बहन हो कोई ज्ञान हो इसमें सब स्वाधीन है कोई पराधीन नहीं ऐसा मौका है और वो कब काम में लोगे अच्छा मौका जा रहा है प्रतिदिन जा रहा है उस अच्छे में भी अच्छा जो सत्संग करते हैं अच्छा संग मिलता है ये अच्छे में भी फिर अच्छा है बढ़िया में भी बहुत बढ़िया है संत समाज में दुर्लभ भाई लोग मिले परलोक मिले वैकुंठ ही सुरलोक मिले वैकुंठ ही जाए सब हो जाए सुंदर और सजा मिली है पर संत समागम दुर्लभ भाई अच्छी चर्चा अच्छी बात बहुत कम मिलती है ठोस बात बहुत कम मिलती है जिससे जीव अपना कल्याण कर सके ऐसी बात बहुत कम मिलती है और वो मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा नहीं तो ऐसी बातें कहां पड़ी है पैसों से नहीं मिलती राज्य से नहीं मिलती बल हो तो उससे नहीं मिलती लोग संपत्तियों के धन से नहीं मिलती मिलती है तो मुफ्त में मिलती अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है। ऐसा मौका मिल गया तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय दुर्लभम त्रय नहीं गई था, ये तो प्रेम दुर्लभम है। तीन प्रदेश बड़ी दुर्लभ है, मनुष्य शरीर और फिर मेरा कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ऐसी इच्छा ही दुर्लभ है, और मनुष्य हो जाए मेरा कल्याण की इच्छा हो जाए तो महापुरुष का मिलना संत का मिलना दुर्लभ है। तो सत्संग में जाए तो कोई न कोई संत भी मिल जाए, क्या पता है कहीं 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 है इधर ही है इस तरह भी। तो सच्चे रास्ते तो लग जाए कम से कम, और नहीं लगोगे तो हानि किसके होगी, ये नुकसान कोई दूसरे के होगा, अपना खुद का नुकसान। चेत नहीं करते, होश में नहीं आते, अपने खुद का नुकसान हो रहा है। ये चेत करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो बोले कैसे ही हो, स्वयं को अपना चेत करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो। मनुष्य शरीर मिल गया है, सामग्री मिल गई है, अपने उद्धार की सामग्री मिल गई है, अब देरी क्यों करनी चाहिए। परवरता हो गया हम नहीं कर सकते तो भगवान से रोक के प्रार्थना करो पुकारो कि नाथ हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारे को कोई उपाय नहीं मिल रहा है, हे नाथ हम क्या करें। ऐसे रो तो भगवान की कृपा है, वो जरूर मिलान करा देती, इसमें संदेह नहीं। अच्छी बात मिल जाएगी, अच्छा उपाय मिल जाएगा। अच्छी से अच्छी चीजें भगवान के दरबार में बहुत भरी है, और वो सब हमारे लिए है, और किसके लिए है बताओ। भगवान के संतान है उनके लिए भगवान की चीजें नहीं है तो किसके लिए है। माँ के पास जो कुछ सामग्री है वो बच्चे के लिए नहीं है तो किसके लिए है। अगर बच्चे के पालने में माँ नहीं लगती तो माँ क्या काम की, उस माँ को तो मर जाना चाहिए ना, किस काम की माँ। बालक का भी पालन नहीं करती, प्यार नहीं करती, स्नेह नहीं करती तो माँ काहे की है वो। ऐसे भगवान संत महात्मा है, जीव कल्याण चाहता है कल्याण नहीं करते नहीं बताते तो उनको मर जाना चाहिए, किस काम के बताओ, क्या काम करेंगे कौन कर। ऐसा सुंदर मौका मिला है, परंतु बहम पड़ा हुआ है कि हम जिएंगे, अभी थोड़े ही मरते हैं, जब मरता तो अभी मरता है, कल मरेगा, कभी मरेगा तो अभी मरेगा, अभी थोड़े ही मरते हैं तो कब मरते हैं साहब आप बताओ, अभी थोड़े ही मरते हैं। मैं तो कहूँ श्वास श्वास में मर रहे हैं, अभी मरने का काम जारी है, आप समझते जीने का काम, हम कहते हैं मरने का काम जारी है, मरना भूलते नहीं। नींद आ जाए तो मरना तैयार, काम धंधा करो तो मरना तैयार, भजन ध्यान करो मरना तैयार, सत्संग करो कुसंग करो मरना तो हरदम हो रहा है। आप किस काम में लगे हैं इसकी परवाह नहीं है, मरने की तो निरंतर लगातार चाल चल रही है। तो चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए, लाभ ले लो भाई, जीवन का लाभ ले लो, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा चट से। मारे निकाल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की देरी, हो ये घड़ी के मैं राख की देरी। जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम
सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सुगरम 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 सुगरम
राम भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार विक्रम संवत 2046 विकृष्ण संवत 5215 तदनुसार दिनांक 1 सितंबर 1989 को प्रातःकालीन 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा पर और प्रातः 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान बिना बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये दोनों प्रवचन हुए। राम